चलिए गायत्री मंत्र के दीक्षा विधान को संक्षेप में समझते हैं। सोचिए क्या हो अगर गायत्री मंत्र सिर्फ एक श्लोक ना हो, बल्कि गुरु और शिष्य के बीच एक तीन चरणीय संवाद हो। असल में यही तो दीक्षा का पूरा विचार है। तो पहला कदम है देना। यहाँ पर मंत्र को गुरु या सविता देवता के दृष्टिकोण से देखा जाता है। वो बताते हैं कि वो कैसे हैं, सर्वव्यापी, तेजस्वी और सबकी बुद्धि को सही राह दिखाने वाले। ये शिष्य के लिए एक आदर्श बन जाता है कि देखो, तुम्हें ऐसा बनना है। फिर आता है दूसरा कदम, प्रार्थना निवेदन। अब नज़रिया शिष्य का हो जाता है। अब यही मंत्र एक प्रार्थना है जिसमें शिष्य ईश्वर से उन्हीं दिव्य गुणों को अपने जीवन में उतारने की याचना करता है। वो कहता है कि मुझे भी वो तेजस्विता चाहिए, मुझे भी पापानाशक गुण अपनाने हैं। और आखिर में आता है स्वीकारना। इस अंतिम चरण में शिष्य उन दिव्य गुणों को पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है। अब प्रार्थना एक घोषणा बन जाती है, जैसे कि हम आपके जैसे तेजस्वी हैं, और शिष्य अपनी बुद्धि को प्रेरित करने के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता है। तो संक्षेप में ये विश्लेषण गायत्री मंत्र को सिर्फ एक जाप से एक सक्रिय आध्यात्मिक यात्रा में बदल देता है, एक आदर्श को देखने से लेकर उसे अपने जीवन में उतारने तक।
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो हमारे पास गायत्री मंत्र पर कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स आए थे, और उनको जब हमने देखा तो मतलब इसे समझने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया मिला।
हाँ बिल्कुल,
ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा है जिसके तीन पड़ाव हैं।
सही कहा, इन दस्तावेजों की सबसे खास बात यही है कि ये मंत्र को एक स्थिर श्लोक की तरह नहीं देखते, ये एक गतिशील प्रक्रिया है। और इसके जैसे तीन मुख्य भाव हैं। पहला है दीक्षा, मतलब देना, जहाँ ईश्वर या कोई दिव्य शक्ति हमें कुछ दे रही है।
अच्छा, यहीं पर पहली बात मुझे बहुत अनोखी लगी। हम तो हमेशा सोचते हैं कि मंत्र में हम कुछ मांग रहे हैं।
हाँ, ज्यादातर यही सोचा जाता है,
पर यहाँ तो शुरुआत ही देने से हो रही है। ये तो पूरी सोच को ही मतलब पलट देता है। तो क्या दिया जा रहा है इस पहले पड़ाव में?
तो यहाँ क्या है कि ईश्वर या गुरु शिष्य को एक तरह का निर्देश या आशीर्वाद दे रहे हैं।
ओके।
संदेश ये है, हम सर्वशक्तिमान सत्ता हैं, हमारे जैसा तेजस्वी बनो, हमारे पाप नाशक गुणों को अपनाओ और दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनो।
वाह,
तो ये एक तरह का आह्वान है। एक नोट में तो इसे और भी खूबसूरती से कहा गया है, उदाहरण बनकर प्रेरक जीवन जियो।
मतलब मंत्र की शुरुआत ही एक जिम्मेदारी से होती है, मांगने से पहले हमें कुछ बनने के लिए कहा जा रहा है।
बिल्कुल।
तो फिर इस यात्रा का दूसरा पड़ाव क्या है? जाहिर है शिष्य हमेशा चुपचाप तो नहीं सुनेगा।
नहीं, और यहीं से दूसरा भाव शुरू होता है, प्रार्थना निवेदन। अब नजरिया पूरी तरह बदल जाता है, अब शिष्य उस दिव्य शक्ति से बात कर रहा है।
अच्छा, तो अब एक संवाद शुरू होता है। शिष्य क्या कह रहा है?
अब शिष्य कह रहा है, हे ईश्वर, हम आपकी उस तेजस्विता को धारण करना चाहते हैं, आपके गुणों को अपनाना चाहते हैं, आप हमारी बुद्धि को सही रास्ते पर चलाएं। तो देखिए, भाव तुम बनो से बदलकर हमें बनाओ हो गया है।
हाँ, ये फर्क साफ है।
एक जगह तो बहुत ही मतलब मजबूत शब्दों का इस्तेमाल है, जहां शिष्य कहता है हमें बलपूर्वक सन्मार्ग पर प्रेरित करें।
एक मिनट, बलपूर्वक, ये शब्द थोड़ा चौंकाने वाला है। आमतौर पर प्रार्थना में इतनी तीव्रता नहीं होती।
सही है,
ऐसे लगता है जैसे शिष्य कह रहा हो कि मैं भटक सकता हूँ, इसलिए मुझे जबरदस्ती आप मुझे धकेलिए सही रास्ते पर। ये तो बहुत गहरी बात है।
हाँ, ये उस गहरी इच्छा और समर्पण को दिखाता है, और यही समर्पण हमें यात्रा के तीसरे और अंतिम पड़ाव पर ले जाता है,
जिसे नोट्स में स्वीकारना कहा गया है।
बिल्कुल।
तो पहले निर्देश मिला, फिर उसे पाने के लिए प्रार्थना की। तो क्या ये तीसरा पड़ाव उस प्रार्थना के सफल होने जैसा है कि अब शिष्य वही बन गया है जो वो मांग रहा था?
आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये इस पूरी प्रक्रिया का शिखर है। यहाँ शिष्य न तो कोई निर्देश सुन रहा है, न ही कोई प्रार्थना कर रहा है।
तो क्या कर रहा है?
अब वो घोषणा कर रहा है।
घोषणा?
हाँ, अब वो खुद उस दिव्य चेतना का हिस्सा बन गया है। अब वो कह रहा है, हम आपके जैसे तेजस्वी और श्रेष्ठ हैं, हमने आपके दिव्य गुणों को धारण कर लिया है।
अरे वाह, मतलब मैं और आपका भेद ही मिट गया।
भेद मिट गया, वो उस दिव्य शक्ति के साथ एक हो जाने का भाव है। अब कोई मांग नहीं है, सिर्फ स्वीकृति है।
तो ये तो सिर्फ एक मंत्र का पाठ नहीं हुआ, ये तो चेतना के विकास के तीन चरण हैं, निर्देश लेना, फिर उसे पाने की इच्छा करना, और आखिर में वो स्वरूप ही हो जाना।
हाँ, दिए गए स्रोत इसे देने, मांगने और अंत में हो जाने का एक पूरा चक्र दिखाते हैं।
कमाल है।
और ये यात्रा एक गहरी कृतज्ञता के साथ पूरी होती है। नोट्स के अंत में लिखा है, आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना अब धन्यवाद में बदल चुकी है।
हाँ, एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। तो ये एक सवाल छोड़ जाता है जिस पर सोचा जा सकता है, शायद मंत्र केवल कुछ मांगने का जरिया है ही नहीं।
हाँ।
बल्कि ये पहचानने की प्रक्रिया है कि जो हम मांग रहे हैं वो बनने की क्षमता हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है।
और शायद प्रार्थना का अंतिम लक्ष्य ही यही हो, मांगना बंद करना और बस उस दिव्य अवस्था में होने के लिए धन्यवाद देना।
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये एक ऐसा मंत्र है जिसे शायद हम में से कई लोगों ने बचपन से सुना है। अक्सर इसे एक प्रार्थना, ईश्वर से की जाने वाली एक विनती के तौर पर ही देखा जाता है। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं। वे बताते हैं कि ये मंत्र सिर्फ एक तरफा प्रार्थना नहीं बल्कि एक गहरा संवाद हो सकता है जिसके तीन अलग अलग पहलू हैं, तीन अलग अलग नजरिए हैं। चलिए आज इसी संवाद की परतों को खोलते हैं।
ये वाकई एक आकर्षक विचार है। स्रोत इससे एक यात्रा की तरह दिखाते हैं ना। इस संवाद का पहला चरण है दीक्षा, यानी जब गुरु या दैवीय शक्ति शिष्य को ज्ञान दे रही है, उसे उसकी असलियत बता रही है। दूसरा चरण है प्रार्थना, जो शायद हम सबसे ज्यादा जानते हैं।
हाँ, वो तो है ही।
जब शिष्य उस ज्ञान को पाने के लिए निवेदन या संकल्प करता है। और तीसरा और सबसे गहरा चरण है स्वीकारना, जब शिष्य उस ज्ञान को पूरी तरह से अपना लेता है, उसे जी रहा होता है। यह एक ही मंत्र के भीतर चेतना के विकास की पूरी कहानी है।
ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। पहला दृष्टिकोण दीक्षा, ये विचार ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। मतलब कल्पना कीजिए कि आप मंत्र का जाप कुछ मांगने के लिए नहीं बल्कि यह सुनने के लिए कर रहे हैं कि आप असल में हैं कौन। यहाँ ऐसा लगता है मानो गुरु या वो परम सत्ता सीधे शिष्य से बात कर रही है।
बिल्कुल, इस नजरिए से देखें तो मंत्र का पहला हिस्सा ओम भूर्भुवः स्वः एक परिचय बन जाता है। जैसे वो परम चेतना कह रही हो, मैं वो सत्ता हूँ जो इस स्थूल जगत में, यानी जिसे हम देख छू सकते हैं, सूक्ष्म जगत में, यानी हमारे विचारों और भावनाओं में, और इन सबके कारण में भी मौजूद हूँ। मैं सर्वव्यापी हूँ। यह एक तरह से अपनी पहचान बताना है।
और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि इसके ठीक बाद वो सत्ता शिष्य की तरफ मुड़ती है। स्रोत बताते हैं कि अगली पंक्ति तत्सवितुर्वरेण्यम शिष्य के लिए एक घोषणा है। गुरु कह रहे हैं, तुम यानी शिष्य हमारी ही तरह उस परम तेज को धारण किए हुए हो। ये कोई प्रार्थना नहीं है, ये एक तथ्य बताया जा रहा है, एक तरह से शीशा दिखाया जा रहा है।
हाँ, और ये शीशा दिखाना जारी रहता है। अगली पंक्ति है भर्गो देवस्य धीमहि। यहाँ भी गुरु शिष्य से कह रहे हैं, तुम हमारी ही तरह पापनाशक और दिव्य गुणों को धारण किए हुए हो।
अच्छा,
यहाँ कोई मांग नहीं है, कोई निवेदन नहीं है, ये एक सीधी सीधी पहचान है। शिष्य को उसके असल स्वरूप की याद दिलाई जा रही है। ये ऐसा है जैसे जैसे कोई हीरा धूल में पड़ा हो और कोई जौहरी आकर कहे, अरे तुम तो हीरा हो।
ये पूरी सोच को ही बदल देता है। मैं तो हमेशा इसे एक प्रार्थना समझता आया हूँ, लेकिन ये विचार कि ये एक निर्देश हो सकता है, मतलब एक एफर्मेशन, ये तो कमाल है। तो फिर इस नजरिए से अंतिम पंक्ति धियो यो नः प्रचोदयात् का क्या मतलब निकलता है? क्या वो भी एक निर्देश है?
हाँ, तो श्रोता यहाँ दो बहुत गहरे अर्थ बताते हैं। पहला अर्थ एक क्षमता की पहचान है। गुरु कहते हैं, तुम हमारी ही तरह सबकी बुद्धि को सही रास्ते पर प्रेरित करने की क्षमता रखते हो। लेकिन दूसरा अर्थ और भी सीधा है और वो एक निर्देश की तरह है।
कैसा निर्देश?
कि तुम हमारी तरह एक मिसाल बनकर एक प्रेरक जीवन जियो। तो ये सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, ये एक जिम्मेदारी सौंपना भी है। ये सिर्फ बताना नहीं है कि तुम क्या हो, बल्कि ये भी कहना है कि अब ऐसा जीवन जीना शुरू करो।
तो ये सिर्फ एक ज्ञान की अवस्था नहीं है बल्कि
कर्म करने का एक सीधा आह्वान है।
सही, ये शिष्य को पैसिव रेसिपिएंट से एक एक्टिव एजेंट बना देता है। अगर कोई इस नजरिए से मंत्र को देखे तो उसके आत्मविश्वास पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये मैं कुछ मांग रहा हूँ से मैं वही हूँ मैं एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है।
बिल्कुल, ये मानसिकता को याचक से बदलकर स्वामी की बना देता है। ये कहता है कि आपको बाहर से कुछ हासिल नहीं करना है, बस अपने अंदर जो पहले से मौजूद है
उसे पहचानना है।
हाँ, उसे पहचानना और व्यक्त करना है। आध्यात्म की शुरुआत यहाँ मांगने से नहीं बल्कि जानने से हो रही है, स्वयं को जानने से।
ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है, लेकिन यही मेरे मन में एक सवाल उठता है। अगर गुरु ने शिष्य को पहले ही बता दिया है कि तुम में ये सारे दिव्य गुण मौजूद हैं, तुम खुद प्रकाश स्वरूप हो, तो फिर प्रार्थना करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? शायद यहीं पर हमारा दूसरा दृष्टिकोण यानी शिष्य का नजरिया सामने आता है, वो नजरिया जिससे हम सब ज्यादा परिचित हैं।
आपने बिल्कुल सही जगह पर उंगली रखी है। यही इस यात्रा का अगला पड़ाव है। जानना एक बात है, लेकिन उसे अनुभव करना, उस ज्ञान और अनुभव के बीच की खाई को पाटना, वो दूसरी बात है। और यहीं से प्रार्थना का चरण शुरू होता है। यहाँ भूमिकाएं पूरी तरह से बदल जाती हैं। अब शिष्य बोल रहा है और ईश्वर सुन रहे हैं।
हाँ, अब मंत्र का भाव ही बदल जाता है। ओम भूर्भुव स्वः अब परिचय नहीं बल्कि एक संबोधन है। शिष्य पुकार रहा है, हे स्थूल सूक्ष्म और कारण जगत के स्वामी, हे सर्वव्यापी सत्ता। इसके बाद तत्सवितुर वरेण्यम और भर्गो देवस्य धीमहि में वो ईश्वर के गुणों का बखान कर रहा है। आप परम तेजस्वी और श्रेष्ठ हैं और आप पाप नाशक दिव्य गुणों को धारण किए हुए हैं। यह प्रशंसा है, एक महिमा का गान है।
और इस प्रशंसा के बाद निवेदन शुरू होता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि स्रोतों के अनुसार इस निवेदन के भी दो स्तर हैं। पहला स्तर एक इच्छा का है, एक विनम्र प्रार्थना का। शिष्य कहता है, हम आपकी उस तेजस्विता को वर्णन करें और हम आपके उन दिव्य गुणों को अपने जीवन में धारण करें। ये एक अभिलाषा है, एक उम्मीद है कि काश हम भी ऐसे बन पाते।
ये करें शब्द बहुत महत्वपूर्ण लगता है। इसमें एक कोमलता है, एक चाहत है, लेकिन आपने कहा कि इसके दो स्तर हैं, तो दूसरा स्तर क्या है?
दूसरा स्तर तब आता है जब ये इच्छा एक संकल्प में बदल जाती है। स्रोत एक और व्याख्या देते हैं जहां क्रिया भविष्य काल में चली जाती है। अब शिष्य कह रहा है, हम आपकी तेजस्विता को वर्ण करेंगे और हम आपके गुणों को जीवन में धारण करेंगे। यह सिर्फ व्याकरण का बदलाव नहीं है, ये मानसिकता का एक बहुत बड़ा बदलाव है।
वाकई ये बहुत गहरा है। करें में आप उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन करेंगे में आप जिम्मेदारी ले रहे हैं। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं रह जाती, ये एक दृढ़ निश्चय बन जाता है। क्या स्रोत इस बारे में कुछ और बताते हैं कि ये बदलाव शिष्य के भीतर कैसे आता है?
स्रोत इसे चेतना के विकास के रूप में देखते हैं। शिष्य सिर्फ चाह नहीं रहा है बल्कि उसने उन गुणों को पाने का फैसला कर लिया है। वो अब सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा का सक्रिय भागीदार बन गया है। और इसी बढ़ी हुई तीव्रता का प्रमाण हमें मंत्र की अंतिम पंक्ति में मिलता है।
अच्छा,
वो कहती है, आप हम सभी की बुद्धि को बलपूर्वक सन्मार्ग पर प्रेरित करें।
ये बलपूर्वक शब्द ये बहुत तीव्र है। ये कोई हल्की फुल्की विनती नहीं है, ये तो ऐसी पुकार है जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति मदद के लिए चिल्ला रहा हो। इसका मतलब है कि शिष्य अपनी कमजोरियों को जानता है, वो जानता है कि उसका मन भटक सकता है, इसलिए वो चाहता है कि दैवीय शक्ति उसे जबरदस्ती मजबूती से सही रास्ते पर रखे।
शिष्य को अपनी सीमाओं का पता है और वो मदद मांगने में संकोच नहीं कर रहा है। तो देखिए, ये यात्रा कहाँ से कहाँ आ गई। गुरु के दिए ज्ञान से शुरू होकर एक विनम्र इच्छा से होते हुए ये अब एक दृढ़ संकल्प और तीव्र पुकार तक पहुंच गई है।
तो हमने देखा कि गुरु ने बताया कि तुम क्या हो, फिर शिष्य ने वैसा बनने की प्रार्थना की और संकल्प लिया। अब इस यात्रा का अगला और अंतिम पड़ाव क्या है? क्या होता है जब वो प्रार्थना सुनी जाती है, या यूं कहें कि जब वो संकल्प पूरा होने लगता है? चलिए अब तीसरे और अंतिम दृष्टिकोण पर चलते हैं, स्वीकारना।
यही इस संवाद का शिखर है। स्वीकारना वो अवस्था है जब शिष्य प्रार्थना और संकल्प से आगे बढ़कर उन गुणों को सच में जी रहा है। यहाँ क्रिया ना तो भविष्य में है, ना ही एक इच्छा है, यहाँ क्रिया वर्तमान में हो रही है। अब शिष्य कह रहा है
कि तत्सवितुर वरेण्यम, यानी हम आपकी तेजस्विता को वर्णन कर रहे हैं, और भर्गो देवस्य धीमहि का अर्थ है हम आपके पापनाशक देव स्वरूप गुणों को जीवन में धारण कर रहे हैं। ये एक चलवान प्रक्रिया है, ये हो रहा है राइट नाउ।
ये न तो भविष्य का वादा है, न ही अतीत का ज्ञान, ये वर्तमान का जीवंत अनुभव है।
अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो ये दृष्टिकोण शिष्य को याचक से कर्ता बना देता है। वो उस प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका है। वो अब बाहर से कुछ मांग नहीं रहा, बल्कि अपने भीतर उन गुणों को सक्रिय रूप से अनुभव कर रहा है, उन्हें जी रहा है। लेकिन स्रोत हमें बताते हैं कि इस स्वीकारने की अवस्था में भी एक और गहरा स्तर है।
एक और स्तर? वो क्या है?
वो अवस्था है जब ये प्रक्रिया भी पूरी हो जाती है और एक स्थायी अवस्था बन जाती है। शिष्य की चेतना और भी ऊपर उठ जाती है। अब वो ये नहीं कहता कि हम कर रहे हैं, बल्कि वो कहता है हम आपके जैसे तेजस्वी श्रेष्ठ हैं,
हैं?
और हम आपके जैसे पापनाशक देव स्वरूप गुणों को अपने जीवन में धारण किए हुए हैं।
अरे वाह, ये तो अहम ब्रह्मास्मि वाली भावना के बहुत करीब है। मैं ब्रह्म हूँ।
हाँ, यहाँ हम करने रहे हैं से बात हम किए हुए हैं तक पहुँच जाती है। मतलब ये अब कोई प्रक्रिया नहीं रही, ये उसकी पहचान बन गई है। जैसे तैरना सीखना एक प्रक्रिया है, लेकिन एक तैराक होना एक पहचान है।
आपने बहुत सुंदर उपमा दी। बिल्कुल यही बात है।
यहाँ द्वैत यानी शिष्य और ईश्वर के बीच की दूरी लगभग समाप्त हो जाती है। और जब ये दूरी मिट जाती है, तो सोचिए मंत्र की अंतिम पंक्ति का क्या स्वरूप होगा। जो पहले एक तीव्र पुकार थी, हमें बलपूर्वक प्रेरित करो, अब वो क्या बन जाएगी?
मुझे लगता है अब वो प्रार्थना नहीं रहेगी। जब मार्गदर्शन मिल ही रहा है तो मांगने की जरूरत नहीं, शायद ये आभार बन जाती है, एक धन्यवाद।
बिल्कुल सही। इस उच्चतम अवस्था में शिष्य कहता है, हम सभी की बुद्धि को बलपूर्वक सन्मार्ग पर प्रेरित करने के लिए आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये इस बात की स्वीकृति है कि मार्गदर्शन मिल चुका है और लगातार मिल रहा है।
वाह,
ये एक पूर्ण चक्र है। गुरु ने शिष्य को उसकी क्षमता बताई, शिष्य ने उसे पाने की प्रार्थना और संकल्प किया, और अंत में शिष्य ने उसे स्वीकार कर लिया, उसे अपनी पहचान बना लिया और उसके लिए धन्यवाद किया।
यह संवाद अपने शिखर पर पहुंच गया है। तो हमने देखा कि कैसे एक ही मंत्र, वही शब्द, साधक की चेतना के स्तर के साथ अपना अर्थ और भाव पूरी तरह बदल लेते हैं। यह गुरु का उपदेश भी है, शिष्य की प्रार्थना भी है और एक सिद्ध पुरुष का अनुभव भी है। यह एक ही नदी है, लेकिन आप उसके किस घाट पर खड़े हैं, इससे आपका अनुभव पूरी तरह बदल जाता है।
इन स्रोतों से मिलने वाली सबसे गहरी जानकारी शायद यही है कि आध्यात्मिकता एक तरफा मांग नहीं है।
यह एक रिश्ता है, एक संवाद है जो समय के साथ विकसित होता है, पूछने से लेकर बनने तक का सफर।
सही।
यह मंत्र हमें दिखाता है कि हमारा ईश्वर के साथ संबंध स्थिर नहीं है, यह गतिशील है और हमारे अपने विकास के साथ साथ यह भी गहरा होता जाता है। ये एक बहुत ही सुंदर और सशक्त विचार है। यहाँ एक ख्याल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इन स्रोतों ने हमें दिखाया कि कैसे एक मंत्र, जिसे हम अक्सर एक प्रार्थना समझते हैं, ईश्वर और व्यक्ति के बीच एक बहुस्तरीय संवाद हो सकता है। क्या होगा अगर हम अपनी अन्य प्रार्थनाओं या धार्मिक ग्रंथों को भी, जिन्हें हम अक्सर एक तरफा निवेदन के रूप में देखते हैं, उन्हें भी एक दो तरफा बातचीत या अपनी ही आंतरिक शक्ति की पुष्टि के रूप में फिर से समझने की कोशिश करें? हमारे लिए और हमारे उस रिश्ते के लिए इससे क्या बदल सकता है?